सब आगे आइए, नहीं थोड़ा ऐसे ताकि मैं भी देख सकूं, थोड़ा ऐसा घुमा के। आप सब थोड़ा अगर आगे आएंगे पिछले दो तीन बार हम ये देख चुके हैं कि चैतन्य महाप्रभु के भिन्न भिन्न लीलाओं का विभाजन कैसे हुआ है। कविराज गोस्वामी ने भी किस प्रकार से इन लीलाओं का वर्णन अलग अलग तरह से किया है, आदि लीला और शेष लीला, शेष लीला के दो भाग मध्य और अंत्य। और हम ये भी सुन चुके हैं कि कैसे आदि लीला के लिए जो सारी लीलाओं की जानकारी है वो मुरारी गुप्त से आई, और शेष लीला के लिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी और रघुनाथ दास गोस्वामी के माध्यम से आई। आदि लीला अधिक विस्तार में चैतन्य भागवत में श्री वृंदावन दास ठाकुर ने किया है, शेष लीलाओं का वर्णन विस्तार में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने चैतन्य चरितामृत में किया है। और कविराज गोस्वामी ने केवल उन लीलाओं का वर्णन विस्तार में किया है जिनका वर्णन वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में नहीं कर पाए, क्योंकि किताब बहुत बड़ा हो गया था। और दूसरी बात कि नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते करते वो भाव भोर हो गए और उस दिशा में चले गए, और महाप्रभु के शेष लीलाओं का वर्णन उतना नहीं कर पाए। तो भी इन तीन लीलाओं के लिए, ये सारे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के लिए आदि लीला ये शुरुआत है। क्या घुमाइएगा, और ठीक है जी, बस बस। तो चैतन्य चरितामृत के तीन भाग, आदि लीला, मध्य लीला और अंत्य लीला। यहां लाएंगे तो पीछे सब देख पाएंगे, थोड़ा सा थोड़ा आगे। हाँ अच्छा, थोड़ा आगे लाएंगे तो पीछे भी सब लोग देख पाएंगे, नहीं तो अक्षर थोड़े छोटे हैं। आप सब देख पा रहे हैं क्या, आप सब पढ़ पा रहे हैं, यहां से आप पढ़ पा रहे हैं? तो मध्य और अंत लीला की बातें हम बाद में करेंगे, जब मध्य लीला में पहुंचेंगे तब। अभी केवल आदि लीला का विश्लेषण करेंगे। आदि लीला में 17 अध्याय हैं, और इन 17 अध्यायों के भी दो भाग हम कर सकते हैं, एक पहले 12 अध्याय और बाद में अंत के पांच अध्याय। अंत के जो पांच अध्याय हैं उसमें चैतन्य भागवत से कविराज गोस्वामी ने आदि लीलाओं को संक्षेप में वर्णन किया है। 13वें अध्याय में उन्होंने महाप्रभु के आविर्भाव का वर्णन किया, प्राकट्य का। 14वें अध्याय में उनकी बाल लीलाएं अर्थात कुमार लीलाएं। फिर 15वें अध्याय में पौगंड लीलाएं। उसके बाद में 16वें अध्याय में केशोर लीलाएं और 17वें अध्याय में यौवन की लीलाएं। आपको पता है कि ये चार अवस्थाएं होती हैं, बाल्य या कुमार, दूसरा है पौगंड, फिर कैशोर और यौवन। तो उनके आविर्भाव के साथ साथ फिर ये पांच अध्याय हो गए जो आदि लीला के केवल अंत में कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है, और वो भी एक झलक मात्र दिया है उन्होंने, क्योंकि पहले से वो कह चुके हैं कि ये जब वृंदावन दास ठाकुर विस्तार में वर्णन कर चुके हैं तो मैं अधिक विस्तार में एक वर्णन करूंगा, केवल सूत्र रूप में मैं इन लीलाओं का वर्णन करूंगा। इसलिए आदि लीला के 17 अध्यायों में केवल 5 अध्यायों में उन्होंने आदि लीला का वर्णन वास्तव में वर्णन किया, और वो भी संक्षेप में। पहले 12 अध्याय जो हैं, जैसे हम पिछली बार कह रहे थे, ये सारे चैतन्य चरितामृत ग्रंथ के लिए एक आमुख है, आमुख प्रिफेस मतलब एक परिचय कराने के लिए एक बुनियाद है जिस आधार पर सारे चैतन्य चरितामृत स्थित है। और इस पहले 12 अध्याय के बारे में भी हम आगे देखेंगे। तो आदि लीला के पहले 12 अध्याय का सार, तो आप में से एक एक कोई पढ़ते जाइएगा, पहले 12 अध्याय में कविराज गोस्वामी ने किन विषयों के ऊपर चर्चा की है, क्या साबित किया है कविराज गोस्वामी ने शास्त्रों के आधार पर, कौन सी बातें हैं जिनके बारे में कविराज गोस्वामी ने विश्लेषण करके कोई बातें सिद्ध की है। पहला, चैतन्य महाप्रभु की युगावतार के रूप में स्थापना, कि चैतन्य महाप्रभु ही इस कलयुग के युग अवतार है। जैसे आपको पता है और आगे चल के मध्य लीला में सनातन शिक्षा के दौरान हम पढ़ने वाले हैं कि भगवान के तरह तरह के अवतार होते हैं, 6 प्रकार के अवतार, उनमें से एक प्रकार के अवतार हैं युग अवतार। 4 युग होते हैं, त्रेता द्वापर और सत्य, त्रेता द्वापर और कलि, और हर एक युग में भगवान का एक एक अवतार अवश्य होता है। तो इस कलयुग के लिए युग अवतार है श्री चैतन्य महाप्रभु, इस बात को कविराज गोस्वामी ने स्थापित किया है। और कौन सी बात स्थापित की है महाप्रभु कविराज गोस्वामी ने, कोई पढ़िएगा।
प्रमाणित करता है कि चैतन्य महाप्रभु भगवान कृष्ण से
अभिन्न। ये दूसरी बात उन्होंने सिद्ध की है कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात श्री कृष्ण ही है। अच्छा, ये बताइए दोनों में, ये पहले और दोनों दूसरे बात में अंतर क्या है? अगर वो अवतार है फिर भी तो वो कृष्ण ही है ना, फिर यहां अलग से कहने की क्या आवश्यकता है कि वो श्री कृष्ण से, वो साक्षात श्री कृष्ण है।
कृष्ण वैसे जो अवतार होते हैं वो विष्णु जी के अवतार होते हैं, पर नॉर्मली जो अवतार ही स्वयं कृष्ण है, मेन है, सबके सोर्स है, तो वो उनसे अभिन्न।
बहुत अच्छा है। पहली बात में जब वो कविराज गोस्वामी स्थापित करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अवतार है, इस युग अवतार है, वो तो सामान्य बात है कि कितने सारे अवतार हैं भगवान कृष्ण के, अनगिनत अवतार हैं। भागवत में वर्णन करना किया जाता है कि जैसे समुद्र में लहरें होती हैं जिनकी गणना नहीं की जा सकती, उसी प्रकार से भगवान के असंख्य अवतार होते हैं। तो कोई सोच सकता है कि ठीक है, चैतन्य महाप्रभु भी उन असंख्य अवतारों में से एक हैं, तो इसलिए दूसरी बात जो स्थापित करते हैं कविराज गोस्वामी कि चैतन्य महाप्रभु अवतार अवश्य हैं, परंतु इस दृष्टि से मात्र कि वो अवतीर्ण हुए हैं, परंतु वास्तव में वो अवतारी कृष्ण है। श्रीमद् भागवत का सिद्धांत है कि श्री कृष्ण वृंदावन के श्याम सुंदर गोविंद कृष्ण वही सर्व समस्त अवतारों के उद्गम है। एते चांस कलह पुंसन कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। ये भागवत का बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। इस श्लोक के ऊपर सारा भागवत आधारित है। परिभाष सूत्र इस प्रकार से, यहां अब कविराज गोस्वामी जो दूसरी बात स्थापित करने वाले हैं वो ये है कि चैतन्य महाप्रभु अवतारी कृष्ण है, वो अवतार मात्र नहीं है। मतलब श्री कृष्ण जो वृंदावन के श्याम सुंदर गोविंद कृष्ण है उनमें और महाप्रभु में कोई अंतर नहीं, दोनों ही साक्षात अवतारी हैं और अन्य जितने भी हैं वो सब उनसे उत्पन्न होते हैं। फिर तीसरी बात जो स्थापित की इन 12 अध्यायों में कविराज गोस्वामी ने वो क्या है, कोई पढ़िएगा। बिल्कुल, तो जब भगवान यहां प्रकट होते हैं तो हर एक अवतार का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। भगवान यूं ही नहीं आते हैं, भगवान तो कोई ना कोई विशेष कार्य या कार्यों को संपन्न करने हेतु आते हैं। तो यहां चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के विशेष कारण का वर्णन है, और वो कारण क्या है कि वो इस कलयुग के पतित जीवों को कृष्ण प्रेम प्रदान करना चाहते थे, विशेष कृष्ण प्रेम, जो वृंदावन का कृष्ण प्रेम है, केवल वैकुंठ का कृष्ण प्रेम नहीं, वृंदावन का कृष्ण प्रेम। और किस माध्यम से वो देने के लिए आए थे? हरिनाम संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से। तो ये तीसरी बात को स्थापित करते हैं कविराज गोस्वामी। चौथी बात पढ़िएगा कोई।
चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के आंतरिक कारणों को प्रकट करता है।
अब कविराज गोस्वामी बहुत गहरी बात भी बताते हैं कि महाप्रभु केवल भगवान की जो गीता में वाणी है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत, या कि मैं हर एक अवतार में संभवामि युगे युगे, युग में प्रकट होकर युग धर्म की स्थापना करता हूं, केवल इतना ही नहीं है, एक बहुत ही गुह्य कारण है। और वो कारण क्या है? वो है कि चैतन्य महाप्रभु किसी विशेष रस का आस्वादन करने के लिए यहां पर आए हैं। तो वो क्या अंदर की बात है, वो कौन सी अंदरूनी बात है, उसको भी कविराज गोस्वामी ने बतलाया है। अगली बात जो हम इस 12 अध्याय में सीख सकते हैं वो क्या है, कोई पढ़िएगा।
अनेक साल अवतरित हुए सहावतार और प्रमुख भक्तों का वर्णन करता है।
तो महाप्रभु के साथ, उनके साथ में केवल महाप्रभु का वर्णन नहीं है, कविराज गोस्वामी ने महाप्रभु के साथ में जो और अवतार हुए हैं वो कौन है हम आगे चल के देखेंगे। तो महाप्रभु के साथ अवतारों का भी अन्य अवतार थे जो आए थे, और अवतारों के साथ भी उनके भक्त भी थे, तो उनका भी वर्णन उन्होंने किया है इन 12 अध्यायों में। ये सारा तत्व दिया हुआ है उन्होंने। तो ये पहले 12 अध्याय जो है तत्व से भरे हुए हैं। अच्छा, अंतिम बात पढ़िए, माइक में पढ़िए।
उनकी शिक्षाओं के सारांश को प्रस्तुत करता है।
साथ साथ में कविराज गोस्वामी ने संक्षिप्त रूप में महाप्रभु के शिक्षाओं का वर्णन भी किया हुआ है। हालांकि महाप्रभु की शिक्षाएं तो बहुत विशाल हैं। सारा चैतन्य चरितामृत पढ़ने के बाद भी हमें लगेगा कि ये तो एक समुद्र ऐसा है जिसको हम कभी पार नहीं कर सकते। इतनी गहराई में, इतने विस्तार में महाप्रभु ने ज्ञान दिया है अपने संवादों के माध्यम से। कविराज गोस्वामी ने सारे चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन किया हुआ है, परंतु पहले 12 अध्यायों में केवल एक झलक मात्र उसके दिए संक्षेप में ये दिया हुआ है। तो ये है आदि लीला के पहले 12 अध्यायों का वर्णन। उसके बाद वाले 5 जो है उनमें तो लीलाओं का वर्णन है संक्षेप में। तो और इन 12 अध्यायों का और विश्लेषण करते हैं। तो इन 12 अध्यायों में उन्होंने अलग अलग विषयों की चर्चा की है। पहले 4 अध्यायों में चैतन्य महाप्रभु के तत्व का विश्लेषण उन्होंने किया है और वर्णन किया है। चैतन्य महाप्रभु कौन है, चैतन्य गौर तत्व क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम सब गौड़ीय वैष्णव हैं। गौड़ीय वैष्णव मतलब जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी हैं। तो हम सब के लिए चैतन्य महाप्रभु के बारे में सही ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भारत में, अन्य देशों की बात तो दूर है, भारत में भी लोग चैतन्य महाप्रभु को सामान्यतः एक भक्त ही मानते हैं। बहुत कम लोग हैं जो जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु साक्षात अवतारी कृष्ण हैं। इसलिए महाप्रभु के तत्व को अच्छी तरह से जानना बहुत आवश्यक है, और ये तो सारे चैतन्य चरितामृत के आधार है। इसलिए इन 12 अध्यायों में से 4 अध्याय पूरे के पूरे उन्होंने केवल महाप्रभु के लिए दिए हैं, साथ साथ में अन्य संबंधित तत्व भी आएंगे इसमें। फिर 5वें अध्याय में उन्होंने नित्यानंद प्रभु का वर्णन किया है। नित्यानंद प्रभु तो स्वयं बलराम है। बलराम होइलो निताई, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर वर्णन करते हैं। 6 अध्याय में अद्वैत आचार्य के तत्व का वर्णन करते हैं। वो तो साक्षात महाविष्णु हैं, परंतु और भी गहराई में जाते हैं। आगे 7वें अध्याय में पंच तत्व का वर्णन करते हैं। हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने के पहले या कीर्तन करने के पहले पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, 1 में 5। तो ये क्या है पंच तत्व, इसका महत्व क्या है, मतलब क्या है, ये समझाते हैं। और फिर 8वें अध्याय में कोई पढ़िएगा क्या है।
चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का गुणगान, पवित्र नाम का उच्चारण, चैतन्य चरितामृत की रचना कैसे हुई।
और विशेष करके इस 8वें अध्याय में जब हरि नाम के बारे में, हरि नाम का गुणगान करते हैं कविराज गोस्वामी, तो ये भी बताते हैं कि कैसे हमें नाम अपराध से मुक्त होना चाहिए। हम हरि नाम लेंगे अपराध से, अपराध करते हुए, तो फिर हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तो ऐसे हरि नाम की व्याख्या करने के बाद फिर वो वर्णन करते हैं कि कैसे उन्होंने चैतन्य चरितामृत ग्रंथ की रचना की और क्यों। ये भी हम पिछले 2-3 प्रवचनों में सुन चुके हैं। और फिर 9वें से 12वें अध्याय में उन्होंने चैतन्य महाप्रभु और उनके पार्षदों का बड़े विस्तार में वर्णन किया है, उल्लेख किया हुआ है। जरा पढ़िएगा
9वें से। चैतन्य
महाप्रभु भक्ति के कल्प वृक्ष श्री चैतन्य महाप्रभु। कविराज गोस्वामी बताते हैं कि महाप्रभु एक ही साथ अचिंत्य रूप से माली भी हैं और वृक्ष भी हैं। माली कौन होता है, जो वृक्ष का पोषण करता है, वृक्ष का देखभाल करता है, और महाप्रभु इस भक्ति वृक्ष की सिंचाई कर रहे हैं, साथ साथ में स्वयं भी वो वृक्ष हैं। ये अचिंत्य है, कविराज गोस्वामी कहते हैं। वो कहते हैं माधवेंद्र पुरी जो हैं वो अंकुर हैं इस वृक्ष के, ईश्वर पुरी जड़े हैं, महाप्रभु जो हैं वो वृक्ष हैं, और उनके फिर कई शाखाएं हैं। थोड़ी शाखाएं हैं जो बहुत बड़े हैं, जैसे प्रमुख प्रमुख उनकी शाखाएं हैं नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य इत्यादि, और ऐसे थोड़े बड़े शाखाएं हैं उनके भी उप शाखाएं हैं और उन उप शाखाओं के भी और उप शाखाएं हैं। तो ऐसे ही एक वृक्ष का विस्तार बहुत ही बढ़ता है। तो इसके लिए कविराज गोस्वामी ने पूरे 9 से 12 अध्याय, 4 अध्याय लिए हैं इसका वर्णन करने के लिए। तो इन 4 अध्यायों में महाप्रभु के समस्त पार्षदों का परिचय हमें प्राप्त होगा, कौन से प्रमुख भक्त थे उनका परिचय, और फिर थोड़ा बहुत जानकारी हर एक भक्त के बारे में कविराज गोस्वामी देते हैं, और वहां तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तात्पर्यों से और भक्ति विनोद ठाकुर के तात्पर्यों से और अधिक जानकारी देते हैं इन पार्षदों के बारे में। तो ये भी ऐसे महान भक्तों के बारे में जो जानकारी है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसे भक्तों की जीवनी से, इनके चरित्र से भक्ति हमारे लिए जीवित हो जाता है। हमें पता चलता है कि केवल 500 साल पहले भी ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं और किस प्रकार से उन्होंने भक्ति की। तो ये 4 अध्याय भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये है पहले 12 अध्यायों का विभाजन। आगे बढ़िए। आगे नहीं है कर, नहीं है, देखिए नहीं है पीछे तो कर रहे होंगे वो, देखिए। नहीं, और वो कर रहे होंगे, लिख रहे होंगे। चलिए वो लेकर आएंगे। अच्छा, तो पिछली बार आपको याद होगा हमने केवल संक्षेप में उल्लेख किया था मंगलाचरण के बारे में। तो मंगलाचरण क्या चीज है आप में से कोई बताइए, कोई बताएंगे आप हाथ ऊपर करके बताइए। हाँ, क्या चीज है ये मंगलाचरण, थोड़ा माइक में बोलिए।
इस विषय में इस प्रस्तुत कर रहे हैं वो हमारा कविराज से पूछा नहीं।
हाँ,
इस दिशा में एक ग्रंथ ले रहे हैं, वो है पोस्ट निर्देश। उसके बाद आशीर्वाद लेना चाहते हैं वैष्णव से, भगवान से, और उसके बाद नमस्कार। तीन प्रकार के,
तो तीन प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। एक है वस्तु निर्देश। वस्तु निर्देश मतलब जिस विषय की चर्चा होने वाली है ग्रंथ में, किताब में, नाटक में, कविता में, प्रवचन में आदि, तो उस विषय का स्पष्टीकरण होता है। पहले से ही लेखक या प्रवक्ता स्पष्ट करते हैं कि मैं इन विषयों के ऊपर चर्चा करने वाला हूं, ताकि पढ़ने वाले को, श्रोता को पहले से ही पता चलता है कि वो क्या सुनने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं। यह है वस्तु निर्देश। तो यह मंगलाचरण का एक उद्देश्य होता है, विषय का स्पष्टीकरण। दूसरा होता है नमस्कार। नमस्कार किनको, किनको करते हैं नमस्कार? भगवान को, और भगवान के शक्तियों को, भगवान के भक्तों को आदि, क्योंकि भगवान और उनके भक्तों को, हमारे से जो वरिष्ठ हैं उनको नमस्कार करके ही कोई शुभ कार्य का आरंभ किया जाता है। कोई भी कार्य करने के पहले आशीर्वाद लेना चाहिए और नमस्कार करना चाहिए। इसलिए तीसरी बात है आशीर्वाद। आशीर्वाद वो आह्वान करते हैं भगवान का और भक्तों का। लेखक स्वयं अपने ऊपर करते हैं या सबके ऊपर करते हैं, श्रोताओं के ऊपर करते हैं, या विश्व, सारे विश्व के ऊपर कराते हैं। तीन तीन चीजों से बहुत महत्वपूर्ण बात है, मांगल्य होता है, मंगल आचरण, इसलिए मंगलाचरण हो जाता है। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्त होते हैं उनके लिए मंगलाचरण तो केवल भगवान और उनके भक्तों का स्मरण करने मात्र से होता है। तो ये हमारा सबसे, हमारा केवल एकमात्र मंगलाचरण है। जैसे आप देखते हैं कि कोई प्रवचन शुरू करने के पहले जितने भी श्लोक बोले जाते हैं ओम अज्ञान तिमिरांधस्य से लेकर अंत तक, वो हम किन की प्रशंसा करते हैं, किन का गुणगान करते हैं? भगवान और उनके भक्तों का बस। और कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे भगवान और भक्तों का स्मरण करने मात्र से यही मंगलाचरण हो जाता है। किसी चीज को का शुभारंभ होना है तो भगवान के स्मरण से होना चाहिए और उनके भक्तों के स्मरण से, अन्यथा कोई चीज का मांगल्य नहीं हो सकता है। और ऐसा स्मरण करने मात्र से सारे जो विघ्न हैं वो नष्ट हो जाते हैं। और दूसरी बात, जो हमारी वांछित चीज है, इच्छाएं हैं, वो पूर्ण हो जाती है। तो मंगलाचरण करने से ये दो फायदे होते हैं। तो पहली बात, मंगलाचरण किया जाता है मांगल्य का आचरण करने के लिए, सब चीज को कल्याणमय और शुभ बनाने के लिए। दूसरी बात, इसके तीन प्रकार होते हैं, वस्तु निर्देश, नमस्कार और आशीर्वाद। तीसरी बात, सबसे श्रेष्ठ मंगलाचरण भगवान और उनके भक्तों का स्मरण करने से होता है। और फिर कविराज गोस्वामी चौथी बात बताते हैं कि भगवान और उनके भक्तों का स्मरण करके जब मंगलाचरण बोला जाता है तो इसमें दो फायदे होते हैं, एक कि हमारे विघ्नों का विनाश हो जाता है, और दूसरी बात क्या है, जितने भी हमारी वांछित इच्छाएं हैं, जितने भी इच्छाएं हमारी हैं वो भी पूर्ण हो जाती हैं। भक्तों की तो सारी इच्छाएं भक्ति से जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए जब कोई भी भक्त ऐसे कार्य आरंभ करता है तो भगवान और भक्तों की कृपा याचना करके करता है। अच्छा, कोई वहां वो चैट के लिए देख लेंगे, है तो नहीं बना रहे हैं? सी, कैन यू गो इन सी परीक्षित, सम मोर चैट्स, कोई गए हैं? अच्छा ठीक। तो मंगलाचरण ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और हर एक अध्याय में कविराज गोस्वामी ऐसा करते हैं, शुरुआत में भी और अंत में भी। शुरुआत में वो अलग अलग श्लोकों में अलग अलग तरीके से भगवान उनके भक्तों की का गुणगान करते हुए कृपा याचना करते हैं, और अंत में भी रूप रघुनाथ गोस्वामियों का स्मरण करके अध्याय अंत करते हैं, समाप्त करते हैं। तो हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए, हम जब सुबह सुबह उठते हैं तो उठते ही तुरंत भगवान का स्मरण करना चाहिए। थोड़े बहुत श्लोक होते हैं, आप में से जो पुजारी सेवा करते हैं आप तो जानते होंगे, अर्चना पद्धति में भी वर्णन करते हैं, हरि भक्ति विलास में भी वर्णन है, कौन से श्लोक हैं भागवत से आदि, जिनको हम उच्चारण करके अपना अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। क्योंकि जब हम रात को सोते हैं तो तमोगुण का संग करते हैं, तो हम अपवित्र हो जाते हैं जब सुबह उठते हैं। और सुबह उठकर जो है हम स्नान आदि करते हैं तो उससे शरीर तो स्वच्छ हो जाता है, परंतु मन को स्वच्छ करना है इसलिए इन श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए, नहीं तो कम से कम हरे कृष्ण महामंत्र तो बोल ही सकते हैं। और ऐसे इसी चेतना में हमारे सारे दिन के कार्यों को शुरू करना चाहिए, फिर हम मंगल आरती आते हैं, जप करते हैं आदि। उसी प्रकार से रात को सोते समय भी हमें ऐसे ही भगवान के का स्मरण करके हमें सोना चाहिए। जब हमारे बिस्तर में जाते हैं तो पहले नमस्कार करना चाहिए भगवान को, चाहे हम रेलगाड़ी में सफर कर रहे हो या हमारे आश्रम में या घर में जहां भी हम रह रहे हो, अंत में भी हमें ऐसे भगवान को नमस्कार करके भगवान का स्मरण करके और ऐसे लेटते लेटते एक दो चार श्लोकों को बोल के हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके फिर सो जाना चाहिए। ये हमारे ताकि हमारा जो दिन है सुबह को, सुबह से शुरू होकर दिन पूरा मंगलमय होगा, कृष्णमय होगा, और रात भी हमारी नींद जो है वो कृष्णमय होगी। तो मंगलाचरण के बारे में हम अधिक चर्चा करेंगे जब वो आ गए हैं। क्षमा कीजिए, थोड़ी जल्दबाजी में हमने अभी अभी तैयारी एक दो घंटे में करके सब भेज दिया, ज्यादा समय नहीं मिलता है सब तैयारी करने का। इसके बाद भी कोई है क्या? देखिए नहीं, इसके बाद कोई है? हाँ ठीक, तो मंगलाचरण के तीन विभाग इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। आप में से जो लिखना चाहते हैं अभी लिख सकते हैं। हम आपसे निवेदन पिछली बार कर चुके थे कि आप में से जो वास्तव में गहराई में चैतन्य चरितामृत को समझना चाहते हैं, आप उस अध्याय को पहले ही घर में या आश्रम में पढ़ के आइए, फिर जो बातें हैं वो आसानी से समझ में आ सकती हैं। गृह पाठ हम सबके लिए होगा। वस्तु निर्देश, आशीर्वाद और नमस्कार, साथ साथ में यहाँ दो लाभ भी बताए हुए हैं, सभी कठिनाइयों का निवारण और दूसरा इच्छाओं की जो है सरलता से पूर्ति। अच्छा घुमाइएगा थोड़ा कागज। मंगलाचरण, तो अब आदि लीला के पहले अध्याय में जो 17 श्लोक है, पहले 17 श्लोक वो मंगलाचरण कहलाते हैं, विशेष करके पहले 14 श्लोक, परंतु बाद वाले 3 श्लोक भी मंगलाचरण ही हैं। तो पहले 14 श्लोक मंगलाचरण के 1 से 14, उसमें परम सत्य का वर्णन पाया जाता है, और इसके बाद वाले जो 3 श्लोक हैं 15, 16 और 17, इनमें कविराज गोस्वामी ने वृंदावन के 3 प्रमुख विग्रहों का वर्णन किया है। कौन से हैं वो 3 प्रमुख विग्रह? पहले क्रम से बोलिए, पहले राधा मदन मोहन, फिर राधा गोविंद गोविंद देव, और फिर गोपीनाथ जी, और इनका महत्व क्या है वो आगे चल के हम देखेंगे। क्योंकि उस समय जब कविराज गोस्वामी यहां पर ब्रज में निवास करते थे तो केवल ये 3 प्रमुख मंदिर थे यहां पर। आजकल तो हजारों की संख्या में मंदिर हो गए हैं, लेकिन उस समय तो केवल 3 बड़े मंदिर थे, और गौड़ीय वैष्णवों के लिए विशेष ये 3 विग्रह महत्व के थे। आगे घुमाइए। अभी हम कह चुके हैं कि मंगलाचरण 17 श्लोक का है, पहले अध्याय के पहले 17 श्लोक, उनमें से पहले 14 के बारे में और हम विस्तार में अभी विश्लेषण करेंगे कि मंगलाचरण के 14 श्लोकों में पहले 6 श्लोक जो हैं वो चैतन्य तत्व का वर्णन करते हैं। ये अभी आप लिख लीजिएगा और साथ में रखिए, और जब आप सारे चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे तो बार बार इसको देखते रहिए, तो आप समझ पाएंगे क्या हम कहां पहुंचे हैं और ये कहां बैठता है सारे ग्रंथ में, तो सारे ग्रंथ का पकड़ हमें आ जाएगा। और इन 6 श्लोकों का विस्तार में उन्होंने वर्णन किया है अध्याय 1 से 4 में, ठीक है। सारे चैतन्य चरितामृत के पहले 6 श्लोक जो मंगलाचरण के हैं उनमें चैतन्य तत्व का वर्णन है, केवल श्लोकों का उल्लेख उन्होंने किया है। और इसके बाद जब सारे मंगलाचरण श्लोकों को लिख देते हैं, वो कह देते हैं, उसके बाद हर एक श्लोक का विस्तार में वो व्याख्या करते हैं, और वो पहले 4 अध्यायों में आता है। तो आदि लीला के पहले 4 अध्याय में क्या पाया जाता है? पहली बात मंगलाचरण, और दूसरी बात जो पहले 6 श्लोक है मंगलाचरण के, इनके ऊपर व्याख्या विस्तार में। चैतन्य तत्व। दूसरी बात, जो मंगलाचरण के सातवें से ग्यारहवें तक श्लोक है अर्थात पांच श्लोक, इसमें नित्यानंद प्रभु के तत्व का वर्णन है जो कविराज गोस्वामी ने पांचवें अध्याय में किया है आदि लीला के सविस्तार रूप से। साथ साथ में बारहवें और तेरहवें जो मंगलाचरण के श्लोक हैं, जो अद्वैत तत्व है, अद्वैत आचार्य के बारे में जानकारी है, ये अध्याय छह में सविस्तार कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है। और अंततः जो चौदहवा मंगलाचरण का श्लोक है वो पंच तत्व का वर्णन करता है और ये सातवें अध्याय में विस्तार में उन्होंने इसका विश्लेषण किया है कविराज गोस्वामी ने। तो देखिए, पहले चौदह श्लोक एक के बाद एक देंगे पहले अध्याय में, फिर आने वाले जो सात अध्यायों में वो पूरा विस्तार में सारे श्लोकों का वर्णन करेंगे। तो पहले सात अध्याय क्या है? केवल मंगलाचरण की व्याख्या है, ठीक है ना। जो उन्होंने मंगलाचरण दिया हुआ है विस्तार में, उन्होंने सात अध्याय लगाए हैं, केवल इस चौदह श्लोकों का वर्णन करते करते उसको बढ़ाकर बहुत सुंदर ढंग से इसके ऊपर टीका करके लिखी है, पूरे सात अध्याय लिए हैं उन्होंने। इसके पीछे भी कुछ है देखिए, नहीं ठीक है। तो अभी एक हमें बैकग्राउंड मिल गया, एक बुनियाद मिल गया है जिससे कि हम अभी चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। ये सब देने के लिए कारण ये है कि हमारे मन में सारा चित्र बन जाए चैतन्य चरितामृत का, और फिर हम प्रवेश करें पढ़ाई में अच्छी तरह से इसके अध्ययन में। तो सबसे पहला श्लोक पिछली बार हम संक्षेप में भी चर्चा कर चुके थे, तो आइए, जिसमें वास्तव में कविराज गोस्वामी छह तत्वों का वर्णन करते हैं। पहले जो दो श्लोक हैं उसमें नमस्कार करते हैं। मंगलाचरण का जो एक उद्देश्य है नमस्कार, वो भगवान को सामान्य रूप से और विशेष रूप से नमस्कार करते हैं। तो इन पहले दो श्लोकों में से पहला श्लोक ये है जो हम अभी पढ़ेंगे। वंदे गुरुन ईश भक्तान, ईशम ईशावतारकान, तत्प्रकाशांश्च तत्शक्तिः, कृष्ण चैतन्य सम्यकम्। वंदे गुरुन ईश भक्तान, ईशां ईशावतारकान, तत्प्रकाशांश्च तत्शक्तिः, कृष्ण चैतन्य सम्यकम्। वंदे गुरुन ईश भक्तान, ईशम ईशावतारकान, तत्प्रकाशांश्च तत्शक्तिः, कृष्ण चैतन्य सम्यकम्। पढ़िएगा, अब बोलिएगा।
वंदे गुरु ईश भक्तान,
ईशावतारकान,
तत्प्रकाशांश्चतत्शक्ति, कृष्ण चैतन्य सम्यकम्।
वंदे गुरुन ईश भक्तान, ईशम ईशावतारकान, तत्शक्ति, कृष्ण चैतन्य सम्यकम्। वंदे गुरुन ईश भक्तान, ईशम ईशावतारकान, शांत तत्शक्ति, चैतन्य सम्यकम्
वन्दे गुरुन् ईश भक्तान्
वन्दे गुरुन् ईश भक्तान् ईशम् ईशावतारकान् तत्प्रकाशाश्च तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य सम्यकम्
माताजी कोई बोलते
वन्दे गुरु ईश भक्तान् ईशम् ईशावतारकान् प्रकाशांश्च तत्शक्तिः कृष्ण चैतन्य सम्यकम् वन्दे गुरुम् ईश भक्तान् प्रकाशांश्च तत्शक्तिः
कृष्ण चैतन्य सम्यकम्
वंदे मैं नमन करता हूँ गुरुन गुरुजनों के प्रति ईश भक्तान भगवान के भक्तों के प्रति ईशम भगवान के प्रति ईश अवतारकान भगवान के अवतारों के प्रति तत् भगवान का प्रकाशान उनके प्रकाश च और तत् परम सत्य भगवान का शक्ति शक्तियों के प्रति कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य संयकम् नामे मैं समस्त गुरुओं भगवत भक्तों भगवान के अवतारों उनके अंशों उनकी शक्तियों तथा आदि भगवान साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। दोहराइएगा, मैं समस्त गुरुओं भगवत भक्तों भगवान के अवतारों उनके अंशों उनकी शक्तियों तथा आदि भगवान साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य को सादर नमस्कार करता हूँ। तो इस एक श्लोक को सारे अध्याय में जब मंगलाचरण समाप्त करते हैं तो बाकी इस पहले अध्याय में केवल इस एक श्लोक का वर्णन है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है क्योंकि इसमें चैतन्य महाप्रभु ने जो परम सत्य की एकता में विविधता है उसका वर्णन किया हुआ है। एक में छह परम सत्य, एक में छह, सिक्स इन वन। और कौन है जो छह तत्व हैं जिनका वर्णन कविराज गोस्वामी इस श्लोक में कर रहे हैं? अभी आप बताइए इस श्लोक देखकर कि कौन से किन छह तत्वों का वर्णन यहां पर किए हैं। सबसे पहला गुरुन, एक वचन है या बहुवचन है? बहुवचन है। और ये क्यों है हम आगे चल के देखेंगे। दूसरे बताइए भक्तान, भगवान के भक्त, ये भी भगवान के ही तत्व माने जाते हैं। गुरुजन भी भगवान के तत्व माने जाते हैं। वही एक परम सत्य के ये छह प्रदर्शन हैं। और तीसरे कौन है? स्वयं भगवान ईशम, जिनका नाम क्या है अंतिम लाइन में? कृष्ण चैतन्य देवम। और फिर चौथे कौन है? भगवान के अवतार तत्प्रकाशांश, मतलब उनके अंश उनके प्रकाश, और तत्शक्ति मतलब उनकी शक्तियां। तो ये सब परम सत्य है। प्रभुपाद जी भी जगह जगह बताते हैं कि कृष्ण मतलब कृष्ण अकेले नहीं, कृष्ण मतलब कृष्ण के अवतार, कृष्ण का धाम, कृष्ण का नाम, कृष्ण का, कृष्ण के गुण, कृष्ण के भक्त, कृष्ण के सामग्री, कृष्ण सब कुछ जो है ये सब कृष्ण है। जितने भी भौतिक सृष्टि है, आध्यात्मिक सृष्टि है, अनंत कोटि वैकुंठ लोक हैं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड है भौतिक जगत में, जितने भी जीव हैं, शक्तियां हैं, सब कुछ ये भगवान है। इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी पत्थर को ले लें और फिर पूजें कि ये भगवान है, ऐसा नहीं। ये सब भगवान है, इसका मतलब है कि ये सब भगवान या भगवान की शक्ति है। भगवान से स्वतंत्र कुछ नहीं है, भगवान के बाहर कुछ नहीं है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है कि हम कह सकें कि ये भगवान के अंदर नहीं है, या भगवान की शक्ति नहीं है, या भगवान से स्वतंत्र है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए भगवान जो है या परम सत्य इस सम्मूप संपूर्ण है। जो भी कुछ है वो परम सत्य है या उनके शक्तियों का विस्तार है, बस। इसलिए भगवान की शक्तियां और भगवान के विस्तार अलग अलग पद्धतियों से, अलग अलग प्रकार से प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं। और ये छह वही परम सत्य इन छह प्रकार से प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं, इनका वर्णन यहां पर है। लेकिन स्तर अलग अलग है, जैसे शक्तियों का स्तर एक है, स्वयं भगवान का स्तर एक है, अलग है, अवतारों का अलग है, इन सब छहों का स्तर अलग है, लेकिन फिर भी सब मिलाकर एक परम सत्य है ये। फिर आगे कविराज गोस्वामी व्याख्या करना शुरू या विश्लेषण करना शुरू करते हैं और वो बताते हैं कि गुरुन जो है ये बहुवचन में इसलिए बताया गया है कि गुरुजन अनेक होते हैं। आदि गुरु कौन है? आदि गुरु तो केवल भगवान है, श्री कृष्ण, विशेष करके नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु विशेष करके आदि गुरु या गुरु के प्रतीक है, गुरु के मूल गुरु है। और नित्यानंद प्रभु की शक्ति द्वारा यहां अलग अलग जीव गुरु का, गुरु की सेवा करते हैं। भगवान के भगवान और शिष्य के बीच में एक माध्यम बनते हैं। तो गुरु कौन होते हैं? गुरु तो स्वयं भगवान है जो अलग अलग रूपों में प्रकट होके बद्ध जीव का उद्धार करने हेतु प्रकट होते हैं। तो ये अचिंत भेदा भेद जो तत्व है, अचिंत रूप से एक साथ है भी और नहीं, ये समझना आवश्यक है। अन्यथा हम मायावादी सिद्धांत को स्वीकार कर लेंगे। मायावादियों का कहना है कि गुरु भी भगवान है। वैष्णव भी मानते हैं कि गुरु भगवान है, लेकिन अलग ढंग से मानते हैं। जिस दृष्टि से मायावादी लोग कहते हैं कि गुरु भगवान है, उस दृष्टि से वैष्णव नहीं कहते हैं। वैष्णव भी कहते हैं साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्र है, साक्षाधरि है वो। मायावादी लोग भी कहते हैं साक्षाधरि है भगवान गुरु, लेकिन दृष्टि अलग है। जब वैष्णव कहते हैं कि गुरु साक्षात हरि है, वो किस दृष्टि से कहते हैं? कि वो साक्षात हरि के प्रतिनिधि है और हरि का ही संदेश देने के लिए यहां पर आए हैं। हरि का प्रतिनिधित्व करते हुए जीवों का उद्धार कर रहे हैं। हरि की ही शक्ति का एक माध्यम है। और क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं इस प्रकार से, तो उनको उस प्रकार से ही सम्मान दिया जाना चाहिए जैसे स्वयं या साक्षात हरि को दिया जाता है। इस दृष्टि से वो हरि हैं। आचार्य मां विजानीयान, जैसे भगवान कृष्ण भी 11वें स्कंद में कहते हैं उद्धव जी से, ये जान लो कि आचार्य मुझसे अभिन्न है, मैं ही आचार्य हूं, आचार ही मैं है। तो इसलिए यहां पर गुरुन कहते हैं। और फिर वो विश्लेषण करते हैं कि वैसे गुरु कई प्रकार के होते हैं। गुरु मतलब जो हमें भगवान तक ले जाता है, जो इस भौतिक बंधन से हमें मुक्त करा देता है। तो पहले कविराज गोस्वामी कहते हैं, मंत्र गुरु आर जातो शिक्षा गुरुगण, तहारा चरण आगे गोरिये वंदन। سب سے پہلے میں ان کے چرنوں میں وندن کرتا ہوں جو میرے منتر گرو ہیں اور جو میرے شکشا گرو گڑھ جو میرے شکشا گرو گڑھ ہیں. منتر گرو کے لیے ایک وچن اور شکشا گرو گڑھ کہتے ہیں تب بہو وچن. تو پربھوپاد جی یہاں سمجھا رہے ہیں کہ دیکشا گرو کیول ایک ہو سکتے ہیں, ایک سے زیادہ نہیں. شکشا گرو انیک ہو سکتے ہیں, ان کے کوئی انت نہیں ہے. اور یہ بھی بتاتے ہیں کبیراج گوسوامی کہ شکشا گرو اور دیکشا گرو میں انتر نہیں ہے. انتر نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ دونوں ہی کرشن کے پرتنیدھی ہیں, دونوں ہی ایک ہی کاریہ کر رہے ہیں, بد جیو کو کرشن کے چرن کملوں کے نزدیک اور لے آنا. تو تتو میں دونوں ایک ہیں. ویکتتو بھلے الگ الگ ہو, دونوں الگ ویکتی ہوں, پھر بھی تتو ایک ہے. یہ گرو تتو ایک ہے. بھگوان سے ہی سب کچھ آتا ہے. بھگوان الگ الگ ویکتیوں کو وہ شکتی پردان کرتے ہیں ان کے بھکتی کے آدھار پر, ان کے تپسیا کے آدھار پر, اور ان کو ایک مادھیم بنا کے یہاں جیووں کا ادھار کرتے ہیں. تو کرشن کسی کے مادھیم سے بھی پرکٹ ہو سکتے ہیں. آگے چل کے یہاں کبیراج گوسوامی اس ادھیائے میں شکشا دیکشا گروؤں کا ورنن کرتے کرتے بلوا منگل ٹھاکر کا ادھارن دیتے ہیں. اور جب شام کو وہاں بلوا منگل ٹھاکر کی چرچا ہو رہی تھی تو اس سمے بھی شلوک کا اچارن ہوا تھا. اور اس میں اس شلوک کے مادھیم سے کبیراج گوسوامی سکھلانا چاہتے ہیں کہ گرو جن جو ہیں وہ کئی پرکار کے ہو سکتے ہیں. اور بلوا منگل ٹھاکر کرشن کرنامرت میں کہتے ہیں, چنتا منیر جیتی سومگریر گرور میں شکشا گروشچا بھگوان شک پنچ مولی یت پاد کلپترو پلو شیکھریشو لیلا سوینور رسم لبھتے جو. اس شلوک کے مادھیم سے کبیراج گوسوامی سکھلانا چاہتے ہیں کہ گرو جن جو ہیں وہ کئی پرکار کے ہو سکتے ہیں. اور بلوا منگل ٹھاکر کرشن کرنامرت میں کہتے ہیں, چنتا منیر جیتی سومگریر گرور میں شکشا گروشچا بھگوان شک پنچ مولی یت پاد کلپترو پلو شیکھریشو لیلا سوینور رسم لبھتے جی شری. چنتامنیر جیتی سومگریر گرور میں, سب سے پہلے چنتامنی کا جے جکار کرتے ہیں بلوا منگل ٹھاکر جو کہ ان کی ورتمان پردرشک گرو تھی. بلوا منگل ٹھاکر کے بارے میں آپ سب نے سنا ہوگا کہ چنتامنی نے پہلے بلوا منگل ٹھاکر کو آدیش دیا کہ جو آسکتی آپ کو میرے میں ہے, مجھ میں ہے, میرے پرتی ہے, اگر وہی آسکتی وہی دھڑتا اگر کرشن میں ہوتی تو آج تک آپ شدھ بھکت بن گئے ہوتے, کتنا اچھا ہوتا. تو بلوا منگل ٹھاکر نے بہت دھڑتا سے اس اپدیش کو سویکار کیا اور اس لیے چنتامنی کو بھولے نہیں کبھی. پہلے الگ درشٹی سے دیکھتے تھے چنتامنی کو, ایک کاموک درشٹی سے دیکھتے تھے, لیکن جب سے ان کے جیون میں یہ پریورتن ہو گیا ان واقعوں کے بعد چنتامنی کو الگ درشٹی سے دیکھنے لگے, اپنے ایک شکشا گرو کی جیسے دیکھنے لگے بلوا منگل ٹھاکر. تو شکشا گرو کے بھی الگ الگ طریقے ہوتے, پرکار ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہے ورتمان پردرشک گرو جو ہمیں پتھ دکھلاتے ہیں. تو چنتامنی نے بلوا منگل ٹھاکر کو پتھ دکھلایا, اس لیے وہ شکشا گرو ہیں, ورتمان پردرشک گرو ہیں. اور پھر آگے بلوا منگل ٹھاکر کہتے ہیں سوم گرور میں, سوم گریر گرور میں, کہ وہ بھی ان کے دیکشا گرو تھے سوم گری ساتھ ساتھ بلوا منگل ٹھاکر. تو شکشا گرو کے بھی الگ الگ طریقے ہوتے, پرکار ہوتے ہیں. ان میں سے ایک ہے ورتمان پردرشک گرو جو ہمیں پتھ دکھلاتے ہیں. تو چنتامنی نے بلوا منگل ٹھاکر کی کو پتھ دکھلایا, اس لیے وہ شکشا گرو ہیں, ورتمان پردرشک گرو ہیں. اور پھر آگے بلوا منگل ٹھاکر کہتے ہیں سوم گرور میں, سوم گریر گرور میں, کہ وہ بھی ان کے دیکشا گرو تھے سوم گری. ساتھ ساتھ سوئم بھگوان نے ان کو شکشا دی. جب بلوا منگل ٹھاکر نے اپنا گھر چھوڑا اور برنداون کی اور آئے تو سوئم بھگوان جو ہے ان کے ساتھ میں آئے. بلوا منگل ٹھاکر اندھے ہو گئے تھے, انہوں نے اپنی آنکھوں کو نکال دیا تھا کسی کارن وش. اور آگے چلتے چلتے کیونکہ وہ اندھے تھے اور ان کو برنداون آنا تھا, تو سوئم بھگوان نے ایک گوال بال کا روپ دھارن کر کے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر وہ آگے لے گئے. بعد میں بلوا منگل ٹھاکر کو پتا چلا کہ یہ تو سوئم کرشن ہے, اور کرشن کو پکڑنا چاہتے تھے لیکن کرشن وہاں سے ان کے ہاتھوں سے نکل گئے. اور پھر بلوا منگل ٹھاکر نے کہا کہ تم میرے ہاتھوں سے تو نکل گئے لیکن اگر تم واستو میں بلوان ہو تو پہلے میرے تم میرے ہردے سے نکل کے دکھاؤ, تب میں سمجھ لوں گا کہ تم واستو میں تمہارے اندر کوئی شکتی ہے. میرے ہاتھوں سے نکل جانا اس کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ میں اندھا ہوں بوڑھا ہوں, لیکن میرے ہردے سے اپنے آپ کو کیسے نکالو گے. تو اس پرکار سے بلوا منگل ٹھاکر نے بہت مدھر کویتا لکھی کرشن کرنامرت. تو اس شلوک کے مادھیم سے جس کو پرمان کے روپ میں کویراج گوسوامی پرستت کر رہے ہیں, یہ تین پرکار کے گروؤں کا اُلیکھ ہے. چنتامنی جو کہ ورتمان پردرشک گرو ہوئی, سوم گری جو کہ دیکشا گرو ہوئے, اور تیسرا بھگوان سوئم جو کہ شکشا گرو ہوئے. تینوں ہی کرشن ہی ہیں اس درشٹی سے کہ کرشن کی شکتی تینوں کے مادھیم سے آئی. تیسرے تو شکشا گرو سوئم بھگوان ہے, ان کا بھاگیہ تھا. ابھی ویسے سمے تو ہو گیا ہے, یہ بہت ہی مہتوپورن وشے ہے, اس لیے تھوڑا سمے اس وشے کے اوپر ہم بتائیں گے. اگلی بار جب ہم شکروار کو ملیں گے تو کرپیا پربھوپا جی کے تاتپر بھی آپ سب پڑھ کے آئیے, پھر سنکشیپ میں ایک کے بعد ایک چیزوں کا ورنن کریں گے. پہلے گرون شبد کا کی چرچا کریں گے, اس کے بعد میں جتنے بھی ہیں پانچوں تتوں کا, انیہ پانچ ہیں بھکت, بھگوان, بھگوان کے اوتار, بھگوان کے انش, بھگوان کی شکتیاں, ان سب کا ورنن سنکشیپ میں کیا جائے گا. اور پھر پہلے ادھیائے کی چرچا ہم اگلی بار سماپت کر لیں گے. ٹھیک ہے, تو ابھی سمے ہو گیا 2:20. کسی کو کوئی پرشن ہے کیا, پرشن یا ٹیکا؟ ہرے کرشنا. واسطے میں ہمیں لگا تھا کہ اتنے گرمی میں دوپہر میں وہ بھی سب آئیں گے تو سب سو جائیں گے, لیکن آپ سب تو اتنے آتور ہیں چیتن چریتامرت کو جاننے کے لیے, سبھی میں سبھی لوگ بڑے آنکھ کھلے ہیں, کسی کوئی سوئے نہیں, تو یہ آپ کا شریا ہے. شریلا پربھوپاد کی جائے, شری چیتن چریتامرت کی جائے, شری کرشن داس کبیراج گوسوامی کی جائے, گو پرمانندے.